फिर देखे, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। अब देखें, इंसान सोच सकता है कि अच्छा ठीक है, सब चीज का निजाम चला रहा है वो, लेकिन हो सकता है मालिक कोई और हो। देखिए ना, आप आपका मसलन ऑफिस है, आपका कोई कारोबार है, आपने किसी को उसमें हायर कर लिया कि उसका निजाम चलाए, लेकिन वो मालिक तो नहीं है ना। तो फरमा दिया कि मिल्कियत भी उसकी, ये लाम जो है ना मिल्कियत का है, मिल्कियत भी उसकी है, वो मालिक है हर चीज का जो आसमानों में और जमीन में। तो ये ना समझना कि सिर्फ कोई एक जगह पे उसका निजाम चलता है। आसमान क्या है आपको पता है? जमीन से ऊपर जो कुछ भी है वो आसमान है, चाहे वो सितारे हैं, चाहे वो सैयारे हैं, चाहे वो सूरज हैं, स्टार्स हैं कितने, चाहे और कितनी गैलेक्सीज हैं, सब उसका है। और उससे ऊपर आसमानों में असमावात, जो आ, 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 हमें पता चलता है कि जो पहला आसमान है ना उसके नीचे है ये सारा कुछ। इस पहले आसमान से ऊपर तो कोई गया ही नहीं है, इसके तो आपको पता है ना दरवाजे हैं, पहरे हैं वहां पे लगे हुए, इससे ऊपर नहीं कोई जा सकता। उससे ऊपर तो ये जिन शयातीन भी नहीं जा सकते, ये भी ऊपर जाते हैं लेकिन पहले आसमान से ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ तक ही आसमान दुनिया तक ही बैठते हैं। तो ये जो आसमान दुनिया है ना उसके नीचे है जो कुछ हम सब देखते हैं, जिसके ऊपर साइंसदान पागल हो गए हैं, हैरान हो के वो कहते हैं हमें तो समझ नहीं आती इस कायनात की जो वुसत है ना। आप कभी इसको इसको देखा करें, आप ये पढ़ें, इसके ऊपर रिसर्च किया करें कि कितनी वुसत है कायनात, ये यूनिवर्स कहाँ तक है। कोई एक गैलेक्सी हो तो फिर कितनी है, ये यूनिवर्स की क्या है डायमेंशंस, वो बता ही नहीं सकते। कहते हैं हम जान ही नहीं सकते इसकी वुसत कितनी, कहाँ तक है ये, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है हमें नहीं पता। अभी इन्होंने बहुत तरक्कियां कर ली हैं, तो ये हाल है, और आए दिन उनको नए इंकशाफात होते हैं। तो अमेज्ड है इस वो यूनिवर्स को ही देख के, अल्लाह की ज़ात तो अभी जानते ही नहीं, इसको ही देख के अमेज्ड है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल लहू कानितून, जो कुछ भी इसके अंदर है ना सब उसके फरमा बता रहे हैं। वो मालिक है, वो इनका खालिक है, पैदा तो उसने किया है, मिल्कियत भी उसकी, ओनरशिप है उसकी, ओनर है इन सब का। यहाँ पे थोड़ी सी जमीन का ही कोई ओनर हो जाता है ना, तो कहता है इतने मुरब्बे हैं मेरे पास और उसके ऊपर कितनी लड़ाइयां होती हैं। और अल्लाह कहता है कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में, हमें तो यही नहीं पता भी आसमानों में है कितना कुछ, वो जो फरिश्ते हैं या और जो जितनी मखलूक है वो कितनी है, किस अब आए दिन कह देते हैं जी वो एलियंस आ रहे, एलियन का वो देख लिया, कोई नहीं हमें पता कि और सितारों सैयारों पे कोई और मखलूक है, हम नहीं जानते। वमा फिल अर्द, और जो जमीन में, आपको पता है जमीन आसमानों के मुकाबले में कैसी है? जमीन आसमानों के मुकाबले साइंसदान ही कहते हैं ऐसे है जैसे रेत का एक जर्रा, रेत कभी उठा के देखिएगा जब आप बीच पे जाते हैं, एक जर्रा कितना होता है रेत का, इतनी वो कहते हैं हमारी जमीन है इस कायनात के मुकाबले में, जैसे समंदर पे पड़ी हुई रेत के मुकाबले में वो एक जर्रा होता है, वो कहते हैं इतनी सी है। अल्लाह ताला ने उस जमीन का जिक्र यहाँ पे क्यों फरमाया? क्योंकि एक तो ये कुरान में बताने के लिए, क्योंकि इंसान के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, इंसानों तुम्हारी जमीन में जो कुछ है ना वो भी अल्लाह की मिल्कियत है, वरना ये जमीन कोई हैसियत नहीं रखती इस कायनात के मुकाबले में, कोई काबिले जिक्र चीज नहीं है। आसमानों में इतनी अल्लाह ताला की और इतनी मखलूक है, इतने सारे सैयारे घूम रहे हैं, ये जमीन की क्या वक्त है? लेकिन इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को यहाँ पैदा किया, इस सैयारे को अल्लाह ताला ने चूज किया इंसान के लिए, तो फरमाया जो कुछ आसमानों में है, चलो हमने कहा हमें आसमानों का नहीं पता चलता क्योंकि इतना बड़ी मखलूक है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है हमें नहीं पता, चलो जमीन का हमें पता होगा। इसके लिए भी मैंने कल आप लोगों के लिए रिसर्च कर रही थी, मैं हैरान हो गई, सुभान अल्लाह, इंसान को तो अभी कितने मिलियन स्पीशीज हैं, वो उनमें से भी 86% का तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन कौन सी मखलूकात इस जमीन पे, 86% का उनको कुछ नहीं पता। बाकी थोड़ा पता है, वो कहते हैं जितना पता है ना 12% 13% जितना पता है, वो भी उनका पता है जो बड़ी बड़ी चीजें हैं और जो सामने नजर आती हैं। तो ये जो शेर चीते ये वो वगैरह, ये जीबरे,
ये चिड़िया, ये चूंटियां, ये चूंकि हमें सामने सामने नजर आती हैं इसलिए इनका पता है, बाकी 86% इस जमीन पे होते हुए ही नहीं जानते, बल्कि ये तो दूर की बात, पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे, पता ही नहीं। और इंसान इस जमीन का कितना परसेंट है, इंसान हम तो समझते हैं ना जमीन पे सारे हम ही हैं, शायद हमारी ही ऐसा है, 0.01% है सिर्फ इंसान इस जमीन पे, बाकी बाकी मखलूकात है। अल्लाह ने फरमाया माफ इस समान, माँ जो लफ्ज आता है ना वो जानदारों के लिए भी और बेजानों के लिए भी है, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग सब के लिए, तो सब की मिल्कियत उसकी है, उसके बाहर किसी की मिल्कियत नहीं। कौन है जो आके चैलेंज करे कि नहीं जी ये मेरा है? इसको तो काफिर भी मानते थे कि हाँ जो आसमानों में और जमीन में सब अल्लाह का है, फिर कैसे हम कहते हैं मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक, क्या मेरा जिस्म इस जमीन का नहीं है, ये मा फिल अर्द में से नहीं हूं मैं, या कहीं और की मखलूक हूं? आसमान और जमीन से बाहर चले जाओ, फिर कहां जाओगे? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, और तुम तो किसी की मिल्कियत हो। हम कहते नहीं, हम किसी की मिल्कियत नहीं, मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ। ये आयतल कुर्सी फिर क्या पढ़ते हो? बहुत सारे लोगों को ये बोलते रहते ना, मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं जो मर्जी करूं। तुम कैसे जो मर्जी कर सकते हो? लहू माफी समाती व माफिल, अपनी हैसियत तो जानो। तो हमारी मिल्कियत कुछ नहीं है, जिन चीजों को हम अपनी मिल्कियत भी समझते हैं वो भी अल्लाह ही की है, ठीक है? तो देखें, और दूसरी फिर ये सबसे बड़ी चीज इसमें निगेशन आ गई शिर्क की, जिसको भी तुम पूजते हो, जिसको भी, चाहे वो कोई भी है, ईसा अलैहि सलाम है, कोई बुत है, कोई सांप है, कोई दरख्त है, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें जिनको पूजा जा रहा है, वो सब कहाँ पे है? इसी जमीन में ही है ना, या आसमान में होंगी, सितारे हैं, तो अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया सब कुछ की मिल्कियत मेरी है, तो फिर तो वो खुदा कैसे हो गए जिनका मालिक कोई और है? फिर सूरज को क्यों पूजते हो? उसका तो मालिक कोई और है, मालिक को पूजो ना, वो तो खुद गुलाम है किसी के, कुल्लु लहू कानितून। वो आता है ना कि ये खजूर के अंदर माँ यमली कुना मेरा कतमीर, खजूर के अंदर जो एक धागा सा है उतने के भी मालिक नहीं है। तुम क्या मिल्कियत की और बात करते हो, और किसके मालिक होंगे? सुभान अल्लाह। लेकिन देखिए वो मालिक कैसा है, कि वो मालिक ऐसा नहीं है कि अब हम भी कई चीजों के मालिक होते हैं, हमारे घर में कई चीजें हैं, हम उनके मालिक हैं, अपने आप को कहते हैं ना, लेकिन हमने उनको फेंका पड़ा है, मसलन है कि वो चीजें सड़ रही हैं, गल रही हैं, उसके ऊपर मट्टी पड़ी, हमें परवाह ही नहीं, हम लेकर आए थे बड़े शौक से, हमने खरीद लिया, हम मालिक बन के बैठ तो गए, लेकिन हमें ख्याल नहीं है उनका, परवाह नहीं करते हम। लेकिन अल्लाह कैसा प्यारा मालिक है कि वो परवाह करता है, देखभाल करता है, नशो नुमा करता है, फेंक नहीं देता कि मैं मालिक कैसा हूं, वो अल कयूम है ना, फिर बात वहीं पे आ गई, फिर वो कायम भी रखता है उसको। हम देखें, और हम किन चीजों की ज्यादा केयर करते हैं बताएं, जब हम हमारे घर में जो चीजें हैं उनमें से किसकी ज्यादा केयर करते हैं, जो हमें पसंद होती है या जो नई हम लेकर आते हैं? पुरानी चीजों को तो हम इधर उस साइड पे फेंक के रखते हैं, वो पुरानी हो गई है, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, या उस बच्चे को ज्यादा पूछते हैं जो हमें पूछता है, उस दूसरे को तो हम कहते हैं कि दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से, जो नाफरमान होता है, जो तंग करता है। लेकिन सोचें अगर लव ही ऐसा करे कि जो उसके फरमा बरदार हो, सिर्फ उनको पूछे, जो उसके प्यारे बंदे, जैसे हम नई चीज को पूछते हैं और पुरानी चीज को फेंक के रखते हैं, तो जो उसके नाफरमान हो, अल्लाह उनको भी कोई जरूरत ना पूरी करे, उनको भी फेंके छोड़े, उनकी भी कुछ ना सुने, ऐसा नहीं है वो रब, वो अल कयूम है, सुभान अल्लाह, के सबको कायम रखता है। अल्लाह हु, ये आप देखें ये आयत ऐसी है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता इतने थोड़े टाइम में। मन जल्लजी यशफा इंदहु इल्ला बि इज़्नि, कौन है, किसकी मिजाल है कि जो शिफात करे उसके आगे, उसके पास, मगर सिर्फ उसके इज़्न के साथ? कौन डेयर कर सकता है कि उसके सामने बोले कि ये फलां जो है ये तो मेरे साथ है, इसको छोड़ दे? अच्छा, क्योंकि ना इंसान सोचता है ना कि अच्छा ठीक है, अल्लाह की मिल्कियत सारी चीजों पे तो है, ठीक है कोई और मालिक नहीं होगा, लेकिन वो जो सारी जिंदगी अल्लाह का नाम लेते रहे, अल्लाह के गुण गाते रहे, उन्होंने इबादत ही करते रहे, बड़ी इबादत गुजारते, बड़े पहुंचे हुए थे ना, उनको तो नहीं अल्लाह इनकार कर सकता। जब हम उनको उनके मुरीद बनेंगे, या हम उनके आगे हाथ बांध के खड़े होंगे, या उनकी कब्रों पे हम चादरें चढ़ाएंगे, तो फिर जाहिर है वो हमारे से खुश हो के वो अल्लाह के सामने जब कहेंगे ना कुछ कि अल्लाह इस बंदे को छोड़ दे, तो फिर अल्लाह ने उनकी नहीं टालनी, नहीं अल्लाह ने फिर उनकी टालता, क्योंकि वो इतने पहुंचे हुए अल्लाह के आगे। तो अल्लाह ताला ने यहां बता दिया, मन जल्लजी, कौन है, किसकी मिजाल है, यशफाउ इंदा हो, जो कि उसके आगे सिफारिश करे। सिफारिश तो दूर की बात, सिफारिश करना तो बाद की बात, वहां पे तो कोई बोल भी नहीं सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन लहुर रहमान व काला सवाबा। अल्लाह ताला सूरह नबा में फरमाता है, किसी की मिजाल नहीं कि कोई जुबान खोल दे सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे कि आप बोलें तो वो बोल सकेगा। तो ये ना समझना कि कोई अल्लाह के हाँ इतना ही चहीता हो गया कि अल्लाह उसको ना नहीं कर सकता, बस अल्लाह ने उसको नहीं इनकार करना बस। अब जब इस किस्म के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जैसे हम दुनिया में शिफात समझते हैं, सिफारिशें समझते हैं ना, वही हमने अल्लाह के पास भी सिफारिशें वैसी ही समझी हुई। हम दुनिया में सिफारिश कैसे समझते हैं जी, हमारे तो कॉन्टेक्ट हैं फलां के साथ, अब कॉन्टेक्ट हैं तो अब मैं चाहे इशारे तोड़ूं, चाहे मैं चोर बाजारी करूं, चाहे मैं करप्शन करूं, चाहे मैं टैक्स ना दूं, तो कोई बात नहीं, हमारे वो कॉन्टेक्ट हैं वजीर के, वो हमें खुद ही छुड़ा लेगा। अब क्या होता है, हमें कानून फॉलो करने की कोई फिक्र नहीं होती, कानून का कोई डर नहीं होता, हमें किसका होता है कि हम बस इस वजीर के साथ अपना ताल्लुक सही रखें, ये कॉन्टेक्ट हमारा बना रहे। इसी तरह जब ये शिफात का अकीदा खराब होता है और हमें लगता है ना कि कोई और हमें छुड़ा लेगा वहां, तो हमें परवाह नहीं रहती कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, हमें परवाह नहीं रहती कि हमने अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है, हमें तो ये है कि भाई ये राजी रहे, आखिर इसने हमें छुड़ाना है। सारा अकीदे का बेड़ा गर्क हो जाता है यहाँ पे, और इंसान की जिंदगी सारी उलट जाती है, क्योंकि अब वो झुकेगा तो किसके आगे जाके झुकेगा, जिससे उसने सिफारिश करानी है, उसका तो यही कॉन्टेक्ट है ना, जिससे उसके काम बनने हैं। तो देखें, जिस वक्त आप आयतल कुर्सी के जरिए अपना अकीदा सही करेंगे ना, उस दिन आप देखेंगे कि ये सारी शिर्क की चीजें निकल जाएंगी जिंदगी से, वो है ही है, वो कयूम है, तुम कैसे जाके उनके सामने जाके माथे टेकते हो जो खुद, जिनको गुसल दिया गया, जिनको खुद चारपाई पे डाल के चार लोगों ने कंधा देख के जाके एक गड़े में डाला, वो तो खुद भी नहीं उतर सकते थे उसमें, जिनको अंधेरे घर के अंदर छोड़ के आ गए, उनको तुम कहते हो कि वो तुम्हारे काम बनाएंगे, जो अपना गुसल नहीं खुद दे सकते थे वो तुम्हारे काम बनाएंगे, क्यों नहीं जाते अलहाई के पास जिसको मौत ही नहीं, उनको तो मौत आ गई, अगर मौत ना आई होती तो वो कहते कि कोई और मुझे गुसल दे, मौत ना आई होती तो कोई और उसका नमाज़े जनाजा पढ़ते, मौत ना आई होती तो क्या कोई और उनको उठा के लेके जाता, खुद क्यों ना चल के चलेगा, वो तो अपने भी फिर काम करने के बस उनका नहीं रहता, अपने भी काम के काबिल नहीं रहते, वो किसी के काम कैसे बनाएंगे, क्यों नहीं सोचते, आयतल कुर्सी की तरफ आओ और अपना अकीदा सही करो। तो शिफात वो शिफात नहीं है जो हमने यहाँ पे, इसको तो दुनिया में भी बुरा समझा जाता है कि जो है ना, देखे सिफारिश करा के, फलाने के पास सिफारिश थी ना तो वो चोर को भी छुड़ा के ले गया, फलाने के पास सिफारिश थी तो देखे आजकल करप्ट लोग इसी तरह छूट जाते हैं, सिफारिशें आ जाती हैं उनकी और वो थानों से उनको छुड़ा के ले जाते हैं, यही हम कहते हैं ना, इसको भी हम यहाँ पे भी अनफेयर चीज कहते हैं। तो अल्लाह के हाँ आपका मतलब है कि कोई इंसाफ नहीं है, अल्लाह के हाँ आपका मतलब है कोई किसी की भी पूछो नहीं, बस जिसने जो सिफारिशें लेकर आनी है जिसको मर्जी छुड़ा छुड़ा के लेके जाते जाना। जैसे हम यहाँ पे थाने में वो कॉल आई पुलिस स्टेशन पे, पुलिस वाले ने वजीर की कॉल सुनी और मुजरिम को कॉल के छोड़ दिया, ये अल्लाह के हाँ नहीं चलता, वहां पे तो सबसे बड़ा इंसाफ है। मगर हाँ, इल्ला भी इदनी का मतलब क्या है फिर, कि अल्लाह जिसको इजन दे, यानी अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा कि अब सिफारिश करो तो उसके लिए सिफारिश की जाएगी, ये सिफारिश का अकीदा ना सही हो जाता है जब ये बात समझ आ जाए। देखिए आगे जो बात है ना उसके साथ जोड़ के फिर आपको जो बताती हूँ, यालमु मा बैना ईदी मा खल्फा, वो तो जानता है सब कुछ, जो अगला पिछला है वो सब जानता है। तुम सिफारिश किसकी लेकर आ रहे हो? तुम कह रहे हो ये अल्लाह ऐसा नहीं था, ये तो बड़ा अच्छा था, असल में इसके साथ ये हुआ, ये हालात हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इसी तरह की बातें करते हैं ना सिफारिश करने के लिए। ऐसे तो नहीं कहा जाता हाँ ये मुजरिम है लेकिन इसको छोड़ दें, ऐसे नहीं, कोई उसकी बताई जाती है बात। और सब चीजें तो अल्लाह को पहले ही पता है, जो सिफारिश करने वाला है और जिसके लिए की जा रही है, दोनों से ज्यादा तो अल्लाह को पता है कि क्या हुआ था। सिफारिश तुम तब करो जब दूसरे को पता नहीं है, तो तुम आके बता रहे हो कि नहीं असल में ये नेक था तो हालात ऐसे हो रहे थे, अल्लाह ताला को तो पहले ही पता है, तुम कैसे लाओगे सिफारिश? सिफारिश इसलिए दी जाएगी किसी लोगों को ऑनर देने के लिए वहां पे, कि देखो मैं इनको इतनी इज्जत देता हूं कि इनके कहने पे मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। हालांकि अल्लाह ने तो उनको जाने देना है, तभी उन किसी के दिल में डालना है कि इनकी सिफारिश करो, और उस टाइम पे डालना है। जाते ही किसी की सिफारिश नहीं ऐसे हो जाने कि भाई हाँ फटाफट वो जाके जन्नत के अंदर दाखिल हो जा रहे हैं, नहीं कैसे होगा? देखें आप ये तो सोचें, ये पता नहीं हम किस गलत फहमियों का शिकार है कि हमें तो कुछ मसला ही नहीं है, बस हमने फलाने का दामन पकड़ लेना है, फलाने का ये कर लेना है, हमारा तो फलां हाफिज बन गया, उसने अपने पीछे इतने लोगों को छुड़ा लेना है, उनकी सिफारिश हो जाएगी। वो खुदा के बंदो अगर ये बात होती तो क्यामत के दिन वो जो समा होगा, आप उसको इमेजिन करें, जो हदीस में आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला अगले, ये हदीस है अबू हुरैरा रिवायत करते हैं इसको, कि अल्लाह ताला अगले और पिछले तमाम इंसानों को एक हमवार मैदान में जमा फरमा दे, जहां पुकारने वाला आसानी से सबको पुकार सकेगा और देखने वाला भी आसानी से देख सकेगा, यानी कोई छुप नहीं सकेगा कि किसी के पीछे हाइड कर गए, हमें हमारा पता ही ना चले, सूरज करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से परेशानी इतनी होगी, तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, लोग आपस में कहेंगे देखो कितना सख्त वक्त आ गया। कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो अल्लाह के हजूर सिफारिश करे ताकि हिसाब किताब शुरू हो। यानी वो अभी तो सोचें कि बाद की सिफारिशों की तो बात छोड़ें, कि अभी सिफारिश ये करो हिसाब किताब शुरू हो जाए। वो आपस में मशवरा करेंगे, कहेंगे हम किसके पास जाएं, लोग कहेंगे हमें ना ऐसा करना चाहिए, आदम अलैहि सलाम के पास जाना चाहिए, लोग आदम अलैहि सलाम के पास जाएंगे, उनको कहेंगे आप अबुल बशर हैं, इंसानों के भी सारे इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, आप अपने अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया, उन्होंने आपको सजदा किया, आज आप अल्लाह के हजूर हमारी सिफारिश करें, आप देख रहे हैं ना हम कितनी मुसीबत में फंसे हैं। आदम अलैहि सलाम कहेंगे आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है, इससे पहले कभी नहीं था ना इसके बाद होगा, मुझे अल्लाह ने जन्नत में दरख्त के करीब जाने से मना किया था लेकिन मैं नाफरमानी कर बैठा, जिसकी वजह से मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, नफसी नफसी अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो कहेंगे नफसी नफसी, तुम लोग जाओ किसी और के पास जाओ। ये नबियों का हाल है, ये अबुल बशर का हाल है, तो कौन लोग होंगे जो कहेंगे हाँ जी हम जाके अल्लाह के सामने खड़े होके आपकी सिफारिश करें, आप फिक्र ही ना करें, ये कौन करेगा? नबी जब ऐसी हालत में हो जाएंगे लोग नूह अलैहि सलाम के पास जाएंगे, आप जाहिर मशवरा करेंगे, चलो उनके पास चलते हैं, अर्ज करेंगे ऐ नूह आप जमीन में सबसे पहले रसूल थे, अल्लाह ने आपको कुरान मजीद में शुक्रगुजार बंदा कहा है, अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश करते हैं, आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही। नूह अलैहि सलाम कहेंगे आज मेरा रब इतना गुस्से में है कि इससे पहले कभी नहीं था ना इसके बाद कभी होगा, मैंने दुनिया में अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वो हलाक हो गई, इसके लिए आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, नफसी 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 की पुकार होगी उनकी, मैंने अपनी कौम के लिए, हालांकि उनकी कौम इतनी बदतमीज कौम थी जिसने 950 ईयर्स तक इनकी दावत को ठुकराए रखा और कैसे कैसे नूह अलैहि सलाम के साथ सलूक किया, फिर भी वो अपनी बद्दुआ पे कहेंगे आज तो हम आराम से बद्दुआएं देते हैं, अल्लाह इनको ऐसे कर दे, फलाने को ऐसे कर दे, फलां काफरों के लिए ये हो जाए, फलां मुल्कों के लिए ये बद्दुआएं करते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा ये बर्बाद हो रहा है, ये बड़ा अच्छा बड़ा मजा आ रहा है हमें, क्योंकि ये काफरों के मुल्क है ना, ये देखें उस दिन कयामत के दिन वो इस बद्दुआ पे जिस कौम को 950 साल उन्होंने तबलीग की उसके ऊपर वो कह रहे होंगे मैंने इनके लिए बद्दुआ की थी, मुझे अपनी जान की फिक्र, वो हमने तो कभी तबलीग भी नहीं की होती लेकिन हमें उनकी बर्बादी का बहुत शौक होता है। ये ना हो कयामत के दिन वो ही उठ के हमारे गिरेवान पकड़ लें कि हमें तो कुछ बताया तुमने था नहीं, आज हम तुम्हारी वजह से खराब हो रहे हैं, तुमने क्यों नहीं अपनी जॉब की, तो वो कहेंगे जाओ तुम लोग जाओ मेरे पास ना हो किसी और के पास जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, तो लोग उनके पास जाएंगे। अर्ज करेंगे। अब देखिए वहां पे भी कितना टाइम लगेगा, ढूंढेंगे पैगंबरों को, वो सारे कहीं एक जगह तो नहीं बैठे हुए कि एक से दूसरे दूसरे तीसरे पे चले गए। इतनी खलकत है उसके अंदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। अब कितना मुश्किल दिन है और कितना लॉन्ग हो रहा है लोगों के लिए ना, कितना लंबा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप अल्लाह के नबी, उसके खलील हैं, आप रब के हजूर हमारी सिफारिश कर दें, आप देख रहे हैं हम किस हाल को पहुंच गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है, ना इसे पहले इस कदर गुस्से में ना था ना बाद में आएगा। दुनिया में मैंने तीन वो बातें जो तौरिया किए थे, जो झूठ बोले थे, जिसकी हालांकि वो झूठ नहीं थे लेकिन उसकी वजह से भी फरमाएंगे मुझे अपनी जान की फिक्र है कि अल्लाह ताला इस पे ना मेरी पकड़ कर ले। नफसी 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 कहेंगे, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे अलावा तुम किसी और के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए सिफारिश कर दें। तो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अर्ज करेंगे ऐ मूसा आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत से आपको फजीलत अता फरमाई, आपसे अल्लाह ने कलाम किया है, सारे लोगों पे आपको फजीलत दी, आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश कर देना, आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज तो मेरा रब इतना गुस्से में, ना इससे पहले कभी था ना कभी इसके बाद हो, दुनिया में मेरे से एक आदमी का कत्ल हो गया था और जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, या अल्लाह मुझे बचा ले, नफसी नफसी नफसी, तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। फिर वो ईसा अलैहि सलाम के पास जाएंगे, उनको कहेंगे ईसा के पास जाओ, वो ईसा अलैहि सलाम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे ईसा आप अल्लाह के रसूल हैं, इसका फरमान है, उसने मरियम की तरफ इल्का किया, अल्लाह की रूह है, आपने बचपन की उम्र में गोद में रह के लोगों से बातें की, आज हमारे लिए अल्लाह के हजूर सिफारिश कर दीजिए, आप देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरा रब इतना गुस्से में है, ना इससे पहले कभी ऐसा गुस्से में था ना कभी ऐसा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम अपने किसी गुनाह का जिक्र नहीं फरमाएंगे, जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम नफसी 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 कहेंगे और फरमाएंगे मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। वो जिन जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम से आस लगाए बैठे हैं कि ये हमारे माँ पे गुनाह अपने ऊपर ले लेंगे, वो तो उस दिन कहेंगे नफसी नफसी, अल्लाह मेरी जान, तब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आपसे लोग कहेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, अपने रब के हुजूर हमारे लिए सिफारिश मरवा दें, आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही। तो आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मैदाने माशर से चलूंगा और अर्श के नीचे पहुंच के अपने रब जुलजलाल के आगे सजदे भी गिर पड़ूंगा उसके अर्श के आगे। उस वक्त अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कलिमात सिखाएंगे, वो उस वक्त ही अल्लाह ताला सिखाएंगे, यानी उस वक्त ही अल्लाह वही करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इससे पहले आज तक दुनिया में आपको भी नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कौन से कलिमात बोले, तो और अल्लाह ने वो कभी नहीं किसी को पहले बताए, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलिमात से अल्लाह की तारीफ बयान फरमाएंगे। फिर इरशाद होगा ए मोहम्मद अपना सर उठाएं और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा, सिफारिश करें, आपकी सिफारिश सुनी जाएगी। पता है ऐसे ही नहीं हो जाएगा, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज के लिए सिफारिश करेंगे कि सब लोगों के फैसले के लिए अल्लाह ताला तशरीफ ले आए, क्योंकि अभी तो फैसले ही नहीं शुरू हुए, और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे कि अल्लाह जो लोग जहन्नुम के अंदर हैं, अल्लाह ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस वक्त होंगे जो नफसी नफसी नहीं फरमाएंगे, लोगों को ये नहीं कहेंगे नफसी नफसी मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, उस वक्त भी फरमाएंगे उम्मती उम्मती उम्मती। तो जब ये फैसले हो जाएंगे, लोग जन्नत जहन्नुम में चले जाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी कि मैं सिर्फ इतने आदमियों को जहन्नुम से निकाल सकता हूँ और जन्नत में ले जा सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, उतने लोगों को सिर्फ लाएंगे, पहले बताया जाता है कि एक इतने ईमान के बराबर जिसके अंदर इतना ईमान हो सिर्फ उसको ले आओ, फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़ेंगे, फिर आप सजदे में पड़े रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, पड़े रहेंगे और अल्लाह की हम्दो सना करते रहेंगे, फिर जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सार उठाओ, बात कहो सुनी जाएगी, सवाल करो दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। अब उतनी देर वो लोग कहाँ पे हैं, वो तो जहन्नुम में जलने लगे हुए ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्दो सना फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की हम्दो सना करूंगा जो अल्लाह मुझे उस वक्त सिखाएगा, उसके बाद फिर मैं सिफारिश करूंगा, फिर मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी कि इतने इसके मुताबिक जो लोग हैं उनको ले आओ। پھر وہ جائیں گے پھر ان کو نکالیں گے. اس طرح 3-4 دفعہ ہوگا. اور راوی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ جس کے اندر ایک رائی, جس نے کبھی اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہو اس کو بھی جہنم سے نکال دو. اور جس نے پھر یہ بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال دو. یعنی اتنی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, آپ کتنا اس میں عرصہ گزر جائے گا. پھر جتنا عرصہ بھی اس بندے کے لیے سزا بھگتنی اس کے اعمال کی وجہ سے جو ہوگی, وہ جب پوری ہو جائے گی تبھی ان کے لیے اجازت ملے گی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آخری دفعہ کہ یا اللہ اب تو جہنم میں کوئی موحد باقی نہیں رہا, یعنی توحید والا, سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے, یعنی جنہیں قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ جہنم میں رہنا, صرف وہ رہ گئے. تو اب آپ سوچیں کئی لوگ اس پہ سن کے اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دن تو نکل ہی جائیں گے, ایک دن نکل جائیں گے. خود سوچو جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنے انہوں نے ہمارے لیے مظالم سہے, کتنا انہوں نے ٹارچر برداشت کیا پوری زندگی. کیا اب ان کی امت اتنا نہیں کر سکتی کہ ان کو اس میں نہ ڈالے, اور بلکہ وہ اس دن فخر کریں ہمارے اوپر, نہ کہ وہ بار بار بے چین ہو رہے ہیں. کیا اس دن کے لیے بھی ان کو نہیں چھوڑو گے؟ وہ بار بار بے چین ہوں, وہ جا کے پھر جہنم سے کوئلہ ہوئے ہوئے جہنمیوں کو نکال کے لائیں, اس پہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی, اللہ ان کو اب ایک ذرے کی بھی تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. جو بڑی محبتوں کے دم بھرتے ہیں سب سے زیادہ وہی کہتے ہیں ہماری تو وہی سفارش کر لیں گے, ہمارے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمارے تو سفارش ہی پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں. ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ جس نبی سے محبت کا وہ دم بھرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے امتی ہونے کا حق ادا کر کے اس دن ان کے لیے فخر کا باعث بنتے, وہ اپنے نبی کو اس پوزیشن میں ڈالیں گے کہ وہ بار بار جائیں, اور وہ بار بار اب لوگ جنت میں جا کے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, بے چین اپنی امت کے لیے. کتنا رلاؤ گے اپنے نبی کو اپنی وجہ سے؟ اور خوش ہوتے ہیں, نہیں کوئی بات نہیں, ہم تو اس کے بعد جہنم کے بعد تو نکل ہی جانا. تو یہ ہے جو اصل شفاعت ہے. اور یہ پھر کب ہوگی, اس کے لیے کب شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ دے گا, یہ اس کے اپنے اعمال کے اوپر ہے. جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنی دیر جہنم میں پڑا رہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ تو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ کو کون بتائے گا, کوئی انہوں نے نئی بات آ کے بتانی ہے کہ اللہ فلاں ایسا فلاں ایسا, اللہ کو کون بتائے گا؟ وہ تو خود سب کچھ جانتا ہے, وہ آگے کو بھی جانتا ہے پیچھے کو بھی جانتا ہے, یعنی جو تمہارے پاسٹ میں ہوا اس کو بھی جانتا ہے, جو فیوچر میں اس کو بھی جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے, وہ یہ بھی جانتا ہے آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے, اور اب سے جانتا ہے, ہمیشہ سے جانتا ہے, اور ہر ایک کے لیے جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے جو آوازوں سے بول کے پکارتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, کوئی اور بھی جان لے گا, لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے جو آپ آہستہ بولتے ہیں, اور وہ بھی جانتا ہے جو دل میں بولتے ہیں. جس کی کوئی آواز نہیں ہے نا اس کو بھی وہ جانتا ہے, وہ والا خیال, خیال میں آواز نہیں ہوتی, وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوهُ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے تو ڈرو اس سے. تو اس کا تو علم اتنا وسیع ہے کہ اتنی آواز کو بھی وہ جان لیتا ہے. یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے اس زمین کے اوپر کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, آگے کو پیچھے کو سب کو, اللہ وہ ہے. تو پھر کوئی اور کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جو اس زمین پہ ہونے والا ہے, جو اس میں بعد میں ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. دیکھیں آپ جتنے احوال آخرت کے قرآن پاک میں ہیں وہ اللہ نے ہی بتایا نا, یہ اس کا علم ہے. کون کیا بولے گا, کون کیا کرے گا, یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے, اتنی پیاری ایک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں فرمایا ہے، بہت پیاری آیت ہے، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی جو چابیاں ہیں نا، چابیاں وہ بھی اس کے پاس ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنا سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، نہیں، اللہ نے جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا، سب نہیں دے دیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ سب جانتا ہے جو خشکی میں اور جو سمندر میں، کتنی سمندروں میں مخلوق ہے، اس کے ساتھ کیا. دیکھیں جب اس نے قائم رکھنا ہے تو وہ جانتا ہوگا اپنی مخلوق کو، تو قائم رکھے گا نا. اگر اس کو پتہ ہی نہیں اپنی مخلوق کا کس کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے، کون بیمار ہے، یا کون کس کی کون سی ضرورت ہے، یا کون پریشان ہے، وہ قائم کیسے رکھے گا؟ تو وہ جانتا ہوگا تو قائم رکھے گا. وہ رب ہے. یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیروں میں، گہرائیوں میں ایک دانہ بھی ہے نا، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں میں ہے وہ. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک ہے یا تر ہے، سب کتاب مبین کے اندر اللہ کے پاس ہے. کہ 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ لکھ جو کچھ ہے. اس نے کہا کیا لکھوں اللہ، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب لکھ دے. وہ تو اس وقت ہی کتاب مبین میں لکھ دیا گیا تھا، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے کس پریشانی سے گزرنا ہے، کس نے خوشحالی سے گزرنا ہے، کس کا رزق کتنا ہے، کس کی اولاد کتنی ہے، کس سے کس نے پیدا ہونا ہے، سب چیز لکھ دی گئی، ہر حالات لکھ دیے گئے. وہ سب کچھ جانتا ہے، علم ہے. تو یہ ہے علم. اس علم پہ ہم کیا فخر کریں کہ ہمیں بڑا علم ہے، اتنا علم ہے کہ سامنے جو کھڑا ہوا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو دیوار کے پیچھے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جو سامنے کھڑا ہے وہ بھی ہمیں کچھ کہتا ہے نا، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ دل سے بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ اور ہے اس کے دل میں. ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا کچھ پتا ہے، ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ ہم نے ایک سال پہلے کیا، ایک مہینہ پہلے کیا، ایک ہفتہ پہلے بھی جمعے کے دن ہم نے اس کے بعد کیا کیا تھا، ہم نے کیا کیا بول بولے تھے، کل میں نے کیا بول بولے تھے، میرے دل میں کیا خیالات آئے تھے، میں نے کتنی باتیں کی تھی، کچھ نہیں پتا. ہم سے تو اپنا پوچھ لے تو ہمیں نہیں پتا. اور اس کا تو علم اتنا وسیع ہے کہ ہر حرکت، ہر سوچ، ہر خیال تک اس کی پہنچ ہے. کتنی مادائیں اس وقت دنیا کے اندر حاملہ ہیں وہ سب جانتا ہے، کس کے پیٹ میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے، کتنی مرغیاں، کتنی بکریاں، کتنے اونٹ کہاں ذبح ہو رہے ہیں اس کو سب پتا ہے، کتنے آج مر گئے، کتنے آج زندہ ہیں سب جانتا ہے، کتنی چونٹیاں مری، کتنے پتے گرے آج کے دن، سب اس کے علم میں ہے. جو جہاں ذبح ہوا اس کی گوشت کس نے کھانا ہے، اس کی ہڈیاں کہاں جا کے گری ہیں، اس کی جو بال ہے، کھال ہے، وہ کہاں گئی ہے، ایک دسترخوان پہ آپ بیٹھتے ہیں کہاں کہاں کا پکوان آیا ہوا ہے، کس لقمے کو کس نے کھانا ہے، یہ کہاں سے چلا اور یہاں تک پہنچانا ہے اللہ نے، کس بوٹی کو، یہ کون سی مرغی کی ہے، کس کو کس کے پیٹ میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور پھر اس انسان کا ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہڈیاں بھی بھربری ہو کے اس کو ہوائیں اڑا دیتی ہیں، کوئی کہیں ذرہ پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی مکان میں لگ جاتا ہے، کوئی کہیں جا کے پڑا ہوتا ہے، وہ ایک ذرے ذرے کا نام و نشان جانتا ہے کہ اس کا یہ ذرہ، اس کا یہ ذرہ اور اس کا وہ ذرہ کہاں پڑا ہوا ہے. اور صرف ایک کا نہیں، صرف انسان کا نہیں، ہر ایک کا، اپنی ساری مخلوق کا، کتنے پرندے ہیں، کتنے گھونسلے ہیں، کتنی مکھیاں ہیں، کتنے چھتے ہیں، کتنی مکڑیاں ہیں، کتنے ہاتھی ہیں، کتنے شیر ہیں، کتنے چیتے ہیں، سب کی ضرورتیں ہیں، سب کے کام، سب کی حالات کو، ایک ایک کو اللہ جاننے والا. یہ صرف لیونگ تھنگز نہیں، نان لیونگ تھنگز بھی، نان لیونگ تھنگز بھی، یعنی وہ پتھر، حجر، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے اور اس کی نظروں میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ہماری تو عقلوں سے بیونڈ ہے. اور یہ تو صرف ہم زمین کی باتیں کر رہے ہیں نا، اور خلاؤں میں کتنے ہیں، آسمانوں میں کہاں کہاں کیا چیز ہے، یعنی اس کے تو فرشتے ہی اتنے ہیں کہ جب وہ بیت المامور کا طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا کہ ان کے ہجوم ہے اور ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے، تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ ان کا اختتام کہاں ہے؟ فرمایا کہ نہ میں نے کبھی ان کا ان کی شروعات دیکھی نہ ان کا اختتام دیکھا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے, وہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. سمندر کی تہوں کے اندر جو مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں, آپ خود سوچے ان مچھلیوں کی ضروریات کیا ہیں, اللہ کو پتا ہے. ان اندھیروں کے اندر اللہ ان کو سن رہا ہے. ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہاں اندھیروں کے اندر, اندھیروں کے اندر, اندھیروں میں, سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں, اور اللہ کی وہ تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ رہی. اللہ جانتا تھا, فرشتوں کو بھی نہیں پتا, کہہ رہے ہیں اللہ ہی کوئی آواز جانی پہچانی سی لگ رہی. تو فرشتے تو نوکر ہیں اللہ کے, وہ نوکر ہیں, وہ خادم ہیں, ان کی پوجا کیسے کر سکتے؟ وہ تو فعال لما یرید ہے, جو چاہے کرے, جو چاہے کرے, جس کو چاہے اٹھا دے, جس کو چاہے گرا دے, جس کو چاہے رنگ لگا دے, جس کو چاہے فقیر کر دے. کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ اللہ اکبر. تو یعلم ما فی ما ایدیہم وما خلفہم کے اوپر آپ جتنا غور و فکر کریں آپ کر لیں, یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اللہ کیا کیا جانتا ہے, اس کی گہرائیوں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے, نہیں پہنچ سکتے اس کی گہرائی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا کسی چیز میں, اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی نہیں احاطہ کر, اس کا جو علم ہے نا اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی پورا احاطہ, یعنی اس کو گھیرنا, یعنی اس کے گرد جیسے کسی چیز کے پوری طرح جان لینا ہوتا ہے نا, جان ہی نہیں سکتا. ہم کسی چیز کو ظاہر میں دیکھ سکتے اپنی آنکھ سے, مگر ہم نہیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں نہیں جان سکتے. اب ایک چیز ہے, ہمیں نہیں پتا کہ مثلا میرے سامنے ایک پلیٹ ہے کھانے کی پڑی, مجھے یہ پتا ہے کہ بھئی یہ چاول ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس نے میرے اندر جا کے صحت بننا ہے کہ بیماری بن جانا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے نقصانات کتنے, میں نہیں جانتی. میں تو میرے سامنے چیز پڑی ہوئی, مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے ہضم بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے نہیں پتا یہ میں نے میرے سامنے تو پلیٹ میں پڑا ہوا, یہ میرے منہ تک بھی جانا ہے کہ نہیں جانا, کچھ بھی نہیں پتا. تم تو کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تو بہت تھوڑا علم دیا. آج دیکھو انسان سر مار رہا ہے کہ ہم یہ کرونا کا کسی طرح ہم اس کا کوئی حل نکال لیں, اس کا کوئی ویکسین نکال لیں, جب تک اللہ نہیں چاہے. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء, جب وہ چاہے گا تو تمہیں اس کا علم دے دے گا, وہ نہیں چاہے تو نہیں دے گا. تمہیں ہاتھا کر ہی نہیں سکتے علم کا, اس میں سے کچھ بھی کہاں سے لاؤ گے؟ سر مارو اپنے, جا کے پٹکو اپنے. تم کہتے ہو میں بڑا, ہم بڑے علم والے ہیں, ہماری سائنس وہاں تک پہنچ گئی. لاؤ نا اپنی سائنس, اب لاؤ سائنس, وہ بھی علم جتنا اللہ نے دے دیا, تو وہ تم آج سائنس پہ جو بڑے فخر کیے کرتے وہ بھی اللہ نے دیا, تم تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتے اسی علم کا. اللہ ماشاء, جب وہ دیکھیں روح کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے, آج تک انسان نے اتنی ترقی کر لی. آپ مجھے بتائیں روح کے بارے میں, جہاں وہ پہلے دن کھڑا تھا نا آج بھی وہیں کھڑا ہے, اس کو نہیں پتا روح کیا ہے, نہیں جانتا روح کو, تو کیا اس کا علم ہوا؟ تو انسان اس قدر بے بس ہے, وہ نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا. یہ دنیا کے وہ ہیں کہ جو دوسروں کے کمپیوٹرز کو ہیک کر لیتے ہیں, چوریاں کر لیتے ہیں انفارمیشن, ملکوں کی انفارمیشن سیکرٹ نکال لیتے ہیں وہاں سے, اللہ کے علم میں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا. اس کی تو غیب کی بھی چابیاں جو ہیں وہ اس کے پاس ہیں, وہ تو غیب کی چابیاں بھی نہیں کوئی جانتا کہ کہاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کو بھی کتنا, اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں کس طرح سے اس کو ان چیزوں کو, دل تو نہیں چاہتا کہ آگے بڑھے. تو اللہ جتنا چاہے بس اتنا تمہیں علم دے دے, جتنا چاہے اور جس چیز کے بارے میں چاہے, بس. اس کے بعد کون ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں ہمیں زیادہ پتا ہے کہ کس کی سفارش کرانی ہے اور کس کو جنت میں ہونا چاہیے اور کس کو کہاں ہونا چاہیے, ہمیں زیادہ پتا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کی کرسی کی جو وسعت ہے, اس کی کرسی چھائی ہوئی آسمانوں پر اور زمین پر. یہ کرسی کیا چیز ہے؟ واللہ عالم. ایک حدیث میں آتا ہے یہ کرسی رحمان کے قدموں کی جگہ ہے, वो क्या है? कुर्सी ऐसी नहीं है चीज जैसे हम कहेंगे हाँ दुनिया में कुर्सी होती है उस पर कोई बैठता है, ना ना अल्लाह ताला के लिए हम बैठने का तसव्वुर या इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते, या उसको कुर्सी की जरूरत है बैठने के लिए, लैसा का मिस्ली शय, अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं, वो बैठने का मोहताज नहीं, वो कुर्सी का मोहताज नहीं। बस ये समझ लें अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है कुर्सी, लेकिन उसकी वुसत अल्लाह ताला ने बताई कि अल्लाह की मखलूक की वुसत ही तुम सोच लो, अल्लाह अकबर। ये जो आसमान जिसको ये कह रहे हैं ना कि हमने नहीं पता इसकी वुसत क्या है कायनात की, अल्लाह ताला ने फरमाया है, हदीस में आता है कि ये जो सातों आसमान है, ये तो सिर्फ एक आसमान की ये बात कर रहे हैं साइंटिस्ट, जो आसमान है दुनिया की बात कर रहे हैं, सातों आसमानों को फ्लैट कर दिया जाए, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, और जमीन भी फ्लैट कर दी जाए, इनको सारों को जोड़ दो, ये सात आसमान हो गए, जमीनें हो गई, सब फ्लैट हो गए, आपने इनको कंबाइन कर लिया ना, ये कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे डेजर्ट के अंदर एक आप, ये आपकी रिंग है ना आपने पहनी हुई उंगली में, ये रिंग रख दी जाए डेजर्ट के अंदर, एक छल्ला पूरे सहरा में जैसे है ना, उस तरह से ये आसमानों जमीन सारे, इस बेचारे साइंटिस्ट को क्या कहना जो एक आसमान की वुसत भी ना पा सका, जिसको एक यूनिवर्स का भी नहीं पता चल सका है कि इसकी वुसत कहाँ तक है, वो बेचारा क्या जानेगा कि सातों आसमान मिला लो पर फिर उन सातों आसमानों को और जमीनों को फ्लैट कर दो तो ये इतने छोटे हैं कुर्सी के मुकाबले में, कुर्सी इतनी बड़ी है जैसे सहरा के अंदर एक रिंग है, और कुर्सी अलग चीज है, अर्श अलग है, अर्श कुर्सी से भी बड़ा है, और कुर्सी इतनी छोटी है अर्श के मुकाबले में, इतनी छोटी है जैसे सहरा के अंदर एक छल्ला रखा। अब मैं सोच रही थी कि इसको हम किस तरह से इमेजिन करें कि कितनी छोटी, उसकी छोटाई की इंतहा नहीं और उस दूसरी चीज की बड़ाई की इंतहा नहीं, कि कैसे इसको इमेजिन करें, तो ये जो मेरी खिड़की से धूप आ रही है ना, इसके अंदर छोटे ये छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं, तो मेरे मुकाबले में ये जो पार्टिकल है ये ऐसे हो सकता है कि डेजर्ट के मुकाबले में एक रिंग रखा, इस पार्टिकल की क्या हैसियत है, कितना छोटा है ना ये, यानी ये अगर मैं अपने जिस्म पे रख दूं तो वाकई वो ऐसे होगा कि डेजर्ट में एक चल्ला, डेजर्ट में एक चल्ला ऐसे समझने कि जैसे आपका जो मुल्क है ना उसके अंदर आपका एक रिंग गिरा हुआ है, उसको ढूंढ रहा है, नजर भी आएगा किसी को, और पूरे आसमानों से जाके दूरबीने लगा के भी देख लें वो चल्ला नहीं नजर आना, इतने बड़े बड़े डेजर्ट्स है ना, तो आप सोचें कि आसमान और जमीन सारे मिला के, सिर्फ जमीन की नहीं बात हो रही, सब मिला के इस रिंग की मानिंद है कुर्सी के मुकाबले में, कुर्सी एक रिंग की मानिंद है सहरा में जो पड़ा हुआ है अर्श के मुकाबले में, जो अर्श से भी ऊपर बुलंद जात है वो कितनी बड़ी होगी, यानी हमारी अब समझ आ रहा है इलाका मानो, अब समझ आए मैस्मराइज्ड हो जाए, अकल दंग रह जाए, ये अकल अल्लाह ने बनाई इतनी नहीं है कि ये अल्लाह को समझ सके, तुम्हारी अकलें बहुत छोटी, ना अल्लाह के मुकाबले किया करो ना बोला करो, ये क्यों अल्लाह ने कह दिया ऐसे, ये क्यों अल्लाह ने ऐसा कर दिया, ये ऐसा क्यों है, इसके अंदर भला क्या हिकमत हो सकती है, और तुम्हें तो वो बता रहा है या लमा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम, तुम्हें तो वो बता रहा है वला युहीतुना बिशय मिन इल्मिही ही इल्ला बिमा शा, तुम हिकमतें ढूंढते हो, वो तुम्हें कोई हिकमत देगा तो तुम्हें पता चल जाएगी, अगर वो हिकमत नहीं बताएगा तो नहीं आएगी दिमाग में, अगर पिछले कुछ अहकाम तलाक किए उनमें कोई हिकमत आपको मैंने बता दी वो इसलिए कि इतनी सी इंसान ने सोची कि हो सकता ही, लेकिन जो असल हिकमत है वो तो उसके पास है, सारी दुनिया का इल्म मिला के कैसे है, जब खिजर अलैहि सलाम के साथ मूसा अलैहि सलाम कश्ती में जा रहे थे और वो परिंदा आके बैठा और उसकी चोंच में एक पानी का कतरा था, तो उस वक्त क्या फरमाया था मूसा अलैहि सलाम ने कि सारी दुनिया का और मेरा और आपका इल्म मिला, खिजर अलैहि सलाम ने फरमाया था कि हमारा इल्म मिला के ऐसे है जैसे ये परिंदे की चोंच में पानी का कतरा है और अल्लाह का इल्म ये है समंदर, और क्या मुकाबला है पूरी दुनिया के इल्म का, और हम फख्र करते हैं अपनी साइंसों पे, तो उसकी जिसकी कुर्सी ऐसे है और उसके ऊपर अरश और वो अल्लाह, तो अल्लाह ताला तक तो हमारा जहन पहुंच ही नहीं सकता, हमारी सोच ही नहीं पहुंच सकती, वो अल्लाह है वो, अल्लाह अकबर, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, और नहीं थकाती उसको इन दोनों की हिफाजत, ये आसमानों और जमीन की हिफाजत उसको कोई थकाती नहीं। यानी देखे ना, अब इतनी चीजों की हिफाजत करना, जो कुछ इनमें है वो भी अल्लाह का है, और जो आसमान और जमीन है वो भी दूसरी जगह आता है कि अल्लाह ताला के लिए है। सारी ये मुल्क लिल्लाही मुल्क समावाती वल अर्द, सबकी बादशाह अल्लाह की, आसमान और जमीन की भी और जो कुछ इसके अंदर भी है। इनकी हिफाजत अल्लाह को नहीं थकाती, एग्जॉस्ट नहीं होता वो कि देखिए आप थोड़े दिन ही किसी चीज के लिए आप खड़े रहे हैं, किसी चीज की हिफाजत करें, किसी चीज को थामे हुए हैं, किसी तो थोड़े दिन में ही इंसान थक जाएगा, उसको हाजिज नहीं करती। ये सारा निजाम चलाना, ये सारा सही से रखना, ये हर चीज को कायम करना, ये वो एग्जॉस्ट ही नहीं होता। और वो आज से थोड़ी चला रहा है कि कोई एक दिन का काम है, ये तो कब से कायनात बनी हुई, और उससे पहले अल्लाह भी तर जानता है क्या क्या चीजें थी, हमें क्या पता। हमें तुम्हारा तो हाल ये है ना, जैसे आपको बच्चा आगे कहे कि मैं नहीं मानता कि जमीन गोल है, ये क्या बात हुई, और ये पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये मैं नहीं मानता, ये क्या बात हुई, तो आप कहेंगे चल चुप करके बैठ जा, चिड़ी अकल में नहीं ये बातें आनी, मैंने तुम्हें समझा सकती, ये कहेंगे ना, क्योंकि उसके समझ में आ भी नहीं सकते। तो हमारा तो इल्म एक बच्चे के इल्म से भी कम है, हमें कहाँ ये बातें समझ आएंगी कि उसकी इनकी हिफाजत अल्लाह को नहीं थकाती। आप खुद सोचे, जब आपको ये पता चल जाए कि आसमान और जमीन कितने छोटे हैं कुर्सी के मुकाबले में, और उन आसमानों और जमीनों को सबको फ्लैट किया हुआ है, तो उसमें एक जमीन कितनी छोटी होगी, और उसके ऊपर मैं और आप कितने बेवकत और हकीर है, अल्लाह ताला के सामने हम कितने छोटे हैं, अपनी छोटाई का एहसास होता है, कितने छोटे हैं, कितने मामूली हैं, कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, कोई हैसियत नहीं है, जब जमीनों आसमान सारे मिला के इनकी कोई हैसियत नहीं, छल्ले के बराबर है, तो उस जमीन छोटी सी बेचारी उसके ऊपर एक इंसान की क्या हैसियत है? और समझते हम अपने आप को क्या है, वो जितना अल्लाह की बड़ाई को समझोगे ना, तब समझ आएगी कि मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, फिर भी उसका करम है कि वो हमें चला रहा है, वो हमें खिला रहा है, वो हमें पिला रहा है, वो हमारी सुनता है। अल्लाह कुर्बान जाए तेरे कि सिर्फ तू ये हो सकता है। हाँ, तू कोई छोटी चीज हो, हकीर चीज हो, तो हम तो उठा के फेंकते ही, हमें परवाह भी नहीं होती। हमारा तो अपना पेट हमें आंखें दिखाए ना, अगर हम उसको भी धुतकार देते, तूने हमें लाडों से रखा हुआ, और फिर हम कहते हैं वो कहाँ है वो खुदा, कि जब हमारे पर मुसीबत आई तो वो कहाँ था, तब हम ये बातें करते, वो खुदा तो है, तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, तुमने अपनी हैसियत को नहीं जाना कि तुम क्या हो, तो उसको थकाती नहीं है इनकी हिफाजत, तो वो क्या तुम्हारी हिफाजत करके थक जाएगा, जिसको आसमान और जमीन की हिफाजत ना थकाए। फिर ये इसलिए है, ये आयतल कुर्सी, इसमें एक कुर्सी का लफ्ज आया ना, और कहीं नहीं आता, यहां आया, और फिर इसकी हिफाजत, जब ये सब चीजों की हिफाजत नहीं अल्लाह को थकाती, तो फिर ये है वो आयत के जो जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे, हमारी हिफाजत फिर क्या बड़ी चीज रह गई, क्या ये जिन्नात और शयातीन के ये क्या चीजें रह गई, और क्या दूसरे इंसान, या क्या ये सांप और ये चीजें छोटी छोटी, ये तो कितनी मामूली चीजें। अरे आप ना जितना इसके ऊपर ना गौर व फिक्र करें ना आयतल कुर्सी पे, ऐसे लगता है कि जहन की जहां तक अकल को दौड़ा ले, अकल थक जाएगी, अकल थक जाएगी, लेकिन वहुवल अलीयुल अजीम, वो इतना अजीम है, इतना बुलंद है, वो रब तक पहुंच नहीं सकती अकल, दौड़ाओ अपनी अकलों को जितना मर्जी, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, हमारी सोचों से बहुत ऊपर है, और उसकी अजमत के कोई अजमत यानी किस में, उसकी हर चीज में अजमत है, हर चीज में, उसके सुनने में, उसके देखने में, उसके जानने में, उसकी अजमत है कि वो अजीम है, यानी उससे आला कोई और चीज नहीं है। लेकिन हम कितनी घटिया चीजों के सौदे करते हैं, जब हम हर चीज पे मर मिट जाते हैं एक अल्लाह को छोड़ के, वो बुलंद को हमने छोड़ दिया जो आला है। तो अगर तुम ये सोचते हो ना कि मेरी समझ में आ जाएगा वो,
हम इतनी ऊंची उड़ान लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमें समझ आ जाएगा। जिसकी खूबियों का कोई एंड ही नहीं, उसको कैसे समझ सकते हैं? जिस जिसको अकलों में आ ही नहीं सकता, हम सोचते हैं वो जो मैं जहां भी मेरी सोच अपनी सोच को जितना मर्जी ले जाए आगे, जितना आप दौड़ा सकते हैं दौड़ाएं दौड़ाएं, जितना आपके पास नॉलेज है ना उस सारे को ले आए और दौड़ाएं अपनी, के जहां पे आपकी अकल जाके एंड होती है ना कि हाँ ऐसा होगा अल्लाह, ऐसा होगा ये, वो अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, इसलिए कि वो तुम्हारी अकलों में आ ही नहीं सकता। जो तुम्हारी अकलों में आ जाए वो रब नहीं है, सुबहान अल्लाह। इसलिए उलमा ने कहा इतनी प्यारी बात कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में फरमाया कि किसी आंख ने ना उसको देखा, ना किसी कान ने उसको सुना, ना किसी दिल पे उसका ख्याल गुजरा। जिसको तुम ख्यालात में सोच लो वो जन्नत ही नहीं है। तो जिसकी मखलूक ऐसी अजीम है कि उसका ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आ सकता, उस अल्लाह को तुम्हारी सोच कहाँ पा सकती है, जिसकी एक छोटी सी मखलूक को भी नहीं तुम इमेजिन कर सकते, अल्लाह तक तुम कहाँ पहुंच सकते। तो उसका कोई तस्वुर भी जहन में नहीं करना चाहिए कि कोई बुजुर्ग सी तस्वीर अपने जहन में ले आए या कोई कुछ, नहीं ये कुफर है, कभी ना ये करें। वो अली है, वो बहुत बुलंद है, वो बहुत अजीम है। इसीलिए हम रुकू में जाते हैं, हम कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला, पाक में मेरा रब जो बुलंद है, सदे में जाके हम ये कहते हैं रब्बी मेरा रब। जैसे आप कहें एक आपके बच्चे का नाम है, आप उसको नाम से पुकारते हैं, एक आप उसको कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी, तो मेरी बेटी में कितना प्यार है, कितनी अपनाइयत। इस तरह हम मोहब्बत से कहते हैं जाके जब सदे में सुबहान रब्बी अल आला, मेरा रब बहुत बुलंद, कितनी बड़ी बात हम कह रहे होते, लेकिन हम उसको कैसे कहते हैं सुभान रब्बी कि हमें खुद ही नहीं पता हम क्या कह रहे। हम कहते हैं रुकू में सुबहाना रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब, वो मेरा रब है जो इतना अजीम है। कितने फखर की बात है कि हम इस रब के बंदे हैं। ऐसे फिर बंदे ने तो अगली आयत यही तो बताती है कि उसने क्या फिर पकड़ लिया, जिसने जिसको ये पता चल गया ना कि वो है मेरा रब, वो तो फखर के साथ अपना अपने आप को कहेगा मैं मुसलमान हूं कि मैं उस रब का मानने वाला। वो शर्माएगा नहीं, वो झिझकेगा नहीं, वो मरहूब नहीं होगा दोनों दूसरों से कि हाँ दो कितने अच्छे लगे हम मुसलमान तो ऐसे नहीं। तुम तो फखर करो कि तुम इस रब के बंदे हो। जैसे किसी ने कहा कि मैं मुझे इस पे नहीं कि मैं क्या चीज हूं, मगर मैं इस पे फखर करता हूं कि वो हस्ती तो देखो जिसका मैं गुलाम, ये है वो हस्ती। तो अपने अकीदे को सही करना है तो यहां से सीखना है अकीदे को सही करना, कि जिस वक्त इंसान कहता है ना अल्लाह अल हई है अल कयूम है, तो सारी ये चीजें खत्म हो जाती हैं कि इंसान किसी और मुगालते में पड़ेगा, कोई और है जो कोई सूली पे चढ़ गया हमारे लिए और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेगा। नहीं, अल्लाह वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो हई और कयूम है। फिर इंसान सोचता है ना कि हाँ उसने हमें पैदा कर दिया, उसके बाद तो उसने हमें छोड़ ही दिया, उसके बाद नहीं, वो अल कयूम है, वो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। वो अच्छा उसको क्या पता, वो पता नहीं अल्लाह अपने और कामों में लग गया होगा, नहीं ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और फिर उसके बाद हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, अब उसने पैदा तो हमें कर दिया लेकिन अब हमारी मर्जी है, नहीं लहू मा फिस समावाती मा फिल अर्द। और फिर उसके बाद क्या है कि कोई बात नहीं अल्लाह गफूर रहीम है, वहां पे कोई हमें छुड़ा लेगा, नहीं, मंजल लजी यशफाउ इंदहु इल्ला बेजने। और उसके बाद क्या सोचते हैं कि कहाँ अल्लाह को छोटी छोटी बातों का इतना एहसास होगा, कहाँ वो इतना नोटिस लेता होगा छोटी छोटी चीजों का, मैंने ये कर भी लिया तो क्या अल्लाह को पता चलना है, नहीं या अलमुमा बहीना ईदीहिम वमा खल्फहुम। और फिर तुम सोचते हो कि हमने बहुत इल्म ले लिया, हम बहुत ऊपर चले गए, हमें सब पता है, नहीं वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। सारा तो अकीदा सही कर देती है ये एक आयत। इस आयत के ऊपर गौर और फिक्र, इस आयत पे तदब्बुर, ये जरूरी है ताकि हम अपने अकीदे को शिर्क से पाक कर सके, ताकि ये इस आयत की बरकात हम ले सके। ये कितनी अजीम आयत है, और जब ये इस आयत का यकीन दिल में आएगा ना, किसी की परवाह ही नहीं फिर रहेगी कि मेरा ताल्लुक किस रब के साथ है। देखो तो सही वो है मेरा रब, फिर दिल करेगा सारी दुनिया को बता दे कि तुम्हें पता है मेरा रब कौन है, तुम्हें पता है वो कैसा है, आओ मैं तुम्हें बताऊं।
اور یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف خود کرا دیا اس قرآن میں, تو ہمیں پتا چلا. سبحان اللہ, پھر دل تڑپے گا جب الہ اس کو مان لیا, محبت اس سے اتنی ہے, تو واقعی وہی محبت کے لائق ہے نا. پھر وہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے, اور وہی اس لائق ہے کہ اس کو دیکھ کے, اس کے کمالات کو سن کے حیران ہو جائے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, کسی کو زبردستی لانے کی ضرورت نہیں اس دین میں. جس نے یہ باتیں پڑھ لی, سن لی, اس کے بعد وہ خود سبمٹ کرے گا. زبردستی نہ کرو کسی کو. کسی نے سن کے بھی اگر نہیں ماننی نا, اگر سن کے بھی کسی کو اثر نہیں ہوتا, تو اس کو جبر سے مت داخل کرو. یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, تم یہ دیکھو ہمارے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جبر ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تلوار کی نوک پہ کہ تم مسلمان ہو جا ورنہ تجھے مار دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو تب بھی ان کو نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جا ورنہ تمہیں ختم کر دیں. کہا یہاں پہ اب رہ نہیں سکتے, جو مشرک ہے بس وہ نکل جائیں یہاں سے. لیکن کسی کو نہیں مسلمان کیا جبر پہ. اور آج لوگ اس کو جب مس یوز کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, جب انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو کہتے ہیں نہ, آپ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو, آپ ہمیں کہتے ہیں یہ پڑھو. لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کوئی زبردستی نہیں. او بھائی, دین میں آنے میں زبردستی نہیں, جب آ گئے ہو تو پھر دین کی ماننی پڑے گی. ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اس ملک میں رہنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں, آپ کہیں اور جا کے رہو, لیکن جب آپ اس ملک کے اندر انٹر ہو جاؤ گے تو اس کا قانون آپ پہ چلے گا, اس کا قانون آپ پہ لاگو ہو جائے گا. آپ گاڑی نہیں چلاتے, نہ چلائیں, آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں گاڑی کے اندر, آپ ایز لانگ ایز نہیں چلاتے آپ کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. لیکن جس دن آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور آپ نے ڈرائیونگ شروع کر دی, تو اب آپ کے اوپر ٹریفک کے قانون لگیں گے. تو یہ تو دنیا میں سب چیز کا سمجھ آتی ہے, اس کی نہیں سمجھ آتی. تو لا اکراہ فی الدین, لیکن زبردستی مت لے کر آؤ کسی کو دین. قد تبین الرشد من الغی, اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دی ہے ہدایت اور گمراہی. کیا آیت الکرسی سے واضح نہیں ہو گئی؟ پورا قرآن واضح کرتا ہے. جھوٹ ہے یہ جو کہے کہ ہدایت واضح نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم کنفیوز ہیں. نہیں, ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو گئی. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ طاقت ہے جو خود بھی حدوں سے نکلی ہوئی ہے اور اللہ کی بندگی سے روک کے کہتی ہے میری بندگی کرو, میری عبادت کرو. لا الہ الا اللہ یہی ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, یہ ہے لا الہ الا اللہ. پہلے کفر کرو طاغوت کا, پہلے انکار کرو طاغوت کا کہ کوئی اور الہ نہیں, کسی اور کی عبادت نہیں, پھر اس کے بعد ہے اللہ. جب اگر کسی نے کہہ دیا اللہ الہ ہے لیکن اور بھی ہیں کوئی الہ, تو وہ نہیں پورا ہوا کلمہ. کلمے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کا انکار کیا جائے سب کا, پھر اس کے بعد کہا جائے ہاں صرف ایک اللہ ہے جس کے اوپر یہ ہے کہ وہ الہ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو کوئی طاغوت کا کفر کرے. اور طاغوت صرف انسان ایک انڈیویجولز نہیں ہے, طاغوت ادارے بھی ہو سکتے ہیں, طاغوت گورنمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, طاغوت کچھ نظام بھی ہو سکتے ہیں, ایسے سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آج دنیا میں ایک طاغوت ہے جو آپ کے سامنے ہے, جب چائنا کی جو حکومت ہے جس طرح یوگرز کے ساتھ کر رہی ہے, یہ طاغوت ہے کہ یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے اور حکومت کی عبادت کرو. حکومت خدا ہے, حکومت کا کانسٹیٹیوشن خدا ہے, تم اس کی عبادت کرو گے اور اللہ کی عبادت نہیں. یہ طاغوت ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے طاغوت کی, کہ وہ اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے, وہ خود بھی اللہ کا باغی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو. ظاہر ہے جب اس کی عبادت ہوئی تو اللہ کی عبادت چھوڑنی پڑے گی نا, اور اللہ کی عبادت کے ساتھ تو نہیں کرے گا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جو لیکن کفر کرے اس کا اور اللہ پر ایمان لائے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اتنی یہ خوبصورت بات ہے, اس نے اتنا مضبوط کڑا تھام لیا. لَنْ فِصَامَ لَهَا, جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس نے سمجھ لو اتنا مضبوط اس کو سہارا مل گیا نا, کیونکہ پھر اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے, اللہ اس کو تھام لیتا ہے. آپ خود سوچیں, ایسی ہستی کسی کو تھامنا چاہے, کسی کو وہ سہارا دے دے تو اس کو اور کیا چاہیے. آیت الکرسی میں دیکھ لیا نا, جو ایسی ہستی ہو, وہ میجسٹک گرینڈ ہستی جس سے اوپر کوئی نہیں ہے, وہ کسی کا سہارا بن جائے اور کیا چاہیے اس کو. تو اس نے کڑا تھام لیا. یہ کڑا کیا ہے؟ بعض نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ قرآن, اس نے قرآن کو تھام لیا پھر اس نے ٹوٹنا نہیں, پھر وہ اس کو ایسا سہارا دے گا. آپ دیکھیں کہ इंसान सोचता है कि ऐसे वक्तों के अंदर अगर किसी ने ऐसा ताहूत का इनकार कर दिया तो जाहिर जुल्म भी करते हैं कि नहीं तुम इबादत करो हमारी और इनकार करो अल्लाह का, लेकिन जब उसने उसका इनकार किया तो क्या है, बिग ट्रबल बिग ट्रबल। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, उसने तो ऐसा मजबूत कड़ा थाम लिया है कि वो डूबेगा नहीं, अल्लाह ने अब उसको थाम लिया। और वाकई फिर जब किसी का ईमान ऐसा होता है ना तो अल्लाह उसका सहारा बन जाता है और फिर अल्लाह उसको ऐसी तसल्लियां देता है। आप देखें असहाबे कहफ का आप पढ़ते हैं ना, फिर क्या असहाबे कहफ का वो तो कैसे अल्लाह ताला ने फिर उनको थामा, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह वलीउल्लदीन आमनू, अल्लाह दोस्त है उनका जो ईमान लाए। युखरिजुहुम मिनदुलुमाति इलन्नूर, वो उनको अंधेरों से निकालता है नूर की तरफ ले आता है। यानी जुल्मतें बहुत सारी हैं, जुल्मतें अंधेरे समझ लें, जैसे समंदर होता है उसमें अंधेरा नीचे जितना जाते जाए ज्यादा अंधेरा होता है, ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ा कम अंधेरा होता है। तो जुल्मतें बहुत सारी हैं, जुल्मत कुफर की भी हो सकती है, शिर्क की भी हो सकती है, गुनाहों की भी हो सकती है, ये एथिज्म की भी हो सकती है, यानी बहुत सारे जुल्मतें हैं। कई बहुत गहरी है, कुफर शिर्क की बहुत ज्यादा अंधेरा है, कई कम अंधेरे वाली। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला जो उसका वली बनता है ना तो वो किसी अंधेरे में अगर है भी अल्लाह उसको निकाल लेता है। जब अल्लाह किसी का वली बनता है, अल्लाह किसी का दोस्त बनता है, वली का मतलब क्या होता है, सपोर्टर। वली का मतलब क्या है कि किसी का जिसको कहते हैं हिमायती, हिमायती दोस्त, पनाह देने वाला, सहारा। अल्लाह ईमान वालों का सहारा बनता है। अभी ईमान वाले भी तो गिर सकते हैं ना कभी ऐसी चीजों में, गुनाहों में भी ऐसे में पड़ सकती हैं, शिर्क तक भी पहुंच सकती हैं। अल्लाह ताला फिर उनका वली बन जाता है और उनको निकाल लेता है उनमें से। लेकिन वल्लदीना कफर, जो कुफर करने वाले हैं, औलिया मुताहूत, उनके जो दोस्त है वो ताहूत होते, वो ताहूत क्या करते हैं, युखरिजूना हुम मिन नूरी जुलुमात, वो ऐसे बुरे दोस्त हैं कि वो उनको नूर से जुल्मतों की तरफ ले जाते हैं। कभी उनको कोई लाइट नजर आने भी लगे ना, कहीं गए हैं, कहीं उन्होंने कोई बात सुन ली है, दिल को लगी है, तो वापस वो जो उनके ताहूत होते हैं वो कहते हैं छोड़ो छोड़ो इन बातों में ना पढ़ो, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, चलो आओ हम यहाँ पे मजा करते हैं, नहीं है एक दफा मिली है कुछ नहीं, वो उनको फिर अंधेरों में खींच के ले जाते। वो इतनी सी नूर की झलक जो उनको नजर आई वो उसमें भी नहीं जाने देते, वो वापिस पुल करती है बैक अंधेरों में। और जब वो वापिस पुल करते रहते हैं, बार बार पुल कर रहे हैं, वो उसको नूर नजर आ रहा है, फिर वो पुल कर रहे हैं, तो फिर एक दिन क्या होगा, मलाइका साबुन नार उन्हीं अंधेरों में ही रह जाएं, ये आग के साथी हैं, हम फीहा खालिदून, इसमें हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला जो अल्लाह को अपना वली बनाता है वो फिर अल्लाह उसको जब कोई अंधेरों में जाने भी लगे, भटकने भी लगे, अल्लाह उसको वापस ले आता है, क्योंकि उसने एक मजबूत कड़ा जो थाम लिया, उसने अल्लाह का जो सहारा ले लिया, अल्लाह फिर उसको गिरने नहीं देता। लेकिन काफरों ने उस ताहूत को दोस्त बनाया ना। आप देखिए यहाँ पे अल्लाह वलीउल्लदीना आमनू है ना, तो होना ये चाहिए था वह ताहूत व औलिया उल्लदीना कफर, ताहूत औलिया है काफर के, कंपैरिजन हो रहा है ना, दोनों मुकाबला हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह पहले है, अल्लाह वली है ईमान वालों का, वहां पे काफिरों का पहले है बात, क्योंकि अल्लाह ने अपना कंपैरिजन भी नहीं चाहा तागूत के साथ, इतना उसको हकीर किया कि उनको बाद में मेंशन किया। तागूत औलिया उल्लदीना कफरू नहीं है यहाँ, जैसे यहाँ पे अल्लाह वली वली उल्लदीना आमन, वरना तो अल्लाह का मुकाबला तागूत के साथ हो जाता। तो ताहूत ऐसे इंसानों का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं जो ताहूत के साथ दोस्तियां रखते हैं। और याद रखें हमेशा कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ताहूत की भी दोस्ती रहे और अल्लाह की भी दोस्ती रहे, अल्लाह ऐसी दोस्ती नहीं एक्सेप्ट करता। अल्लाह की दोस्ती के लिए जरूरी है ताहूत का इनकार किया जाए। तो जितनी बातें हुई सब बातों का, चूंकि इतना वक्त नहीं है, लेकिन सब बातों का जिस्ट इसमें है, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا। अगर समंदर स्याही बन जाए और अल्लाह के कलिमात लिखने लगो, अल्लाह की बातें लिखने लगो, तो समंदर खुश्क हो जाएंगे, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। चाहे तुम और ऐसे और समंदर ले आओ, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। और दूसरी जगह है, सारे समंदर स्याही बन जाए और सारे दरख्तों की कलमें बना लो और अल्लाह की बातें लिखने लगो। अल्लाह का इल्म कितना है, अल्लाह ताला की किबरियाई कैसी है, अल्लाह की बड़ाई कैसी है, उसकी अजमत कैसी है, उसकी मोहब्बत कैसी है, उसकी मिल्कियत कैसी है, उसकी मखलूक कैसी है, उसका कायम रखना कैसा है, उसकी कुर्सी की वुसअत कैसी है, उसकी तारीफ कैसी है। खत्म हो जाएंगे समंदर और टूट जाएंगी कलमे, घिस घिस के खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون